पिंकेश कुमार की आवाज में बीए द्वितीय वर्ष तुलनात्मक शासन एवं राजनीति व्यवस्थापिका तुलनात्मक अध्ययन में रूसी संघ व्यवस्थापिका संघीय सभा फेडरल असेंबली। संघीय सभा रूसी संघ की संसद, रूसी संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था एवं विधायी निकाय है। संविधान का अनुच्छेद 94। 1993 के रूसी संविधान ने रूस की विधायी शक्तियां, वहां की संसद जिसे संघीय सभा यानी फेडरल असेंबली के नाम से संबोधित किया जाता है, में समाहित की है। रूस की संसद अथवा संघीय सदा सभा द्विसदनात्मक है, जिसका उच्च सदन को संघीय परिषद फेडरल काउंसिल एवं निम्न सदन जो कि प्रतिनिधित्मक है को ड्यूमा कहा गया है। संघीय परिषद में इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है और समानता के आधार पर प्रत्येक राज्य से दो सदस्यों का मनोनयन यानी चयन होता है, जबकि निम्न सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। संघीय सभा एक अस्थायी निकाय है। इसे अस्थायी निकाय इस अर्थ में माना जाता है कि केवल कुछ समय के अंतराल को छोड़कर इसके सत्र चलते ही रहते हैं। इस रूप में यह पूर्व सोवियत संघ की संसद से काफी भिन्न है, जो रबर स्टाम्प की तरह वर्ष में केवल कुछ दिनों के कार्य के लिए कार्य करती थी। संघीय सभा शक्तियां एवं कार्य। रूस के संविधान के अनुच्छेद 94 में संघीय सभा को सर्वोच्च विधायी निकाय मानते हुए कहा गया है कि संघीय सभा रूसी संघ की संसद, रूसी संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधित्मक एवं विधायी निकाय है। रूस का संविधान तथा संघीय कानून संघीय सभा को न केवल व्यापक विधायी अधिकार प्रदान करते हैं, अपितु कई अन्य अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करते हैं, जिनका अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला, कानून निर्माती संस्था। जैसा कि अनुच्छेद 94 से परिलक्षित होता है कि संघीय सभा रूस की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यद्यपि कानून बनाने का प्रस्ताव विधेयक संघीय सभा ही नहीं अपितु राष्ट्रपति, सरकार, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री, स्थानीय विधायक, उच्चतम न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय एवं मध्यस्थता का उच्च न्यायालय भी प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उन पर कानून बनाना संघीय सभा की ही शक्ति है। संविधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति एक बार वीटो लागू कर सकता है, किंतु संघीय सभा द्वारा पुनः उसी विधेयक को पारित कर देने पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। रूस की संघीय सभा की शक्तियों पर सीमाएं भी लागू होती हैं। इसका कारण रूस द्वारा संघात्मक शासन अपनाया जाना है। संघीय सभा संविधान में उल्लिखित संघीय विषयों एवं संयुक्त विषयों पर कानून बना सकती है। उसे संघीय कानूनों के निर्माण, संविधान में संशोधन, नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा, नागरिकता, संघीय बजट, संघीय विद्युत, परमाणु ऊर्जा, संघीय परिवहन, रेलवे, अंतर्राज्यीय संधियों के अनुसमर्थन, रक्षा, सुरक्षा, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, न्यायिक कानून, संघीय राज्य सेवाओं जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य। रूस के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संघीय सभा के उच्च सदन संघीय परिषद की देखरेख में प्रारंभ होती है। संघीय परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करती है एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनः निर्वाचन की तिथि की भी घोषणा करती है। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य। यद्यपि रूस में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, किंतु फिर भी रूसी सरकार के सभापति यानी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रियों को संघीय सभा के सरकारी घंटे में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। संविधान में ने यद्यपि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति एवं सरकार में समाहित की हैं, किंतु फिर भी इसमें संघीय सभा को भी कुछ स्थिति में भागीदार बनाया गया है। राष्ट्रपति को विशिष्ट एवं उच्च पदों पर नियुक्ति कर लिए संघीय सभा के में आसीन होने वाले व्यक्तियों के नामों को अनुमोदित कराना होता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति को भी संघीय सभा के निम्न सदन ड्यूमा से अनुमोदित कराना पड़ता है। ड्यूमा इस पर लगातार 3 बार असहमति देने का अधिकार रखती है। ड्यूमा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी अधिकार रखती है। युद्ध, मार्शल लॉ या आपातकाल लागू करने संबंधी घोषणा करते समय राष्ट्रपति को तत्काल संघीय सभा के दोनों सदनों को सूचित करना होता है। चौथा, प्रशासन पर नियंत्रण। संघीय सभा प्रशासन पर नियंत्रण का भी कार्य करती है। सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछकर अथवा स्वयं की विभिन्न समितियों या आयोगों के माध्यम से प्रशासन के कार्यों की जांच पड़ताल भी करती है। पांचवा, वित्तीय कार्य। संघीय सभा का एक मुख्य कार्य राष्ट्रीय बजट पर नियंत्रण रखना भी है। सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट को पारित करती है अथवा अस्वीकार कर सकती है। संघीय सभा चाहे तो अपनी तरफ से बजट बनाकर राष्ट्रपति के स्वीकार्थ भेज सकती है। राष्ट्रपति रूसी संघ की कार्यपालिका बैंक के सभापति को नियुक्त करने अथवा बर्खास्त करने पर संघीय सभा की सहमति लेता है। केंद्रीय बैंक के सभापति को नियुक्त करने अथवा बर्खास्त करने पर संघीय सभा की सहमति लेता है। लेखांकन समिति के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति का अधिकार भी संघीय सभा को प्राप्त है। केंद्रीय बैंक के लेखा खातों की जाँच के लिए एक समिति की भी नियुक्ति करती है। छठा, न्यायिक कार्य। रूस के संविधान का अनुच्छेद 93 संघीय सभा को यह शक्ति देता है कि वह राजद्रोह अथवा संगीन अपराध जो न्यायालय द्वारा सिद्ध हो चुका हो की स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। संघीय सभा को आम माफी का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय परिषद संरचना एवं कार्य। संघीय परिषद संघीय सभा का उच्च सदन है। 1993 के संविधान द्वारा संघीय परिषद की संरचना में जो व्यवस्था की गई है उसमें अनेक दोष अनुभव किए गए। ऐसी स्थिति में संघीय परिषद की रचना के संबंध में अगस्त 2000 में एक नया कानून स्वीकार किया गया जिसे रूसी संघ की संघीय सभा व संघीय परिषद के गठन की प्रक्रिया पर संघीय कानून कहा जाता है। फेडरल लॉ ऑन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ द फेडरल असेंबली ऑफ द रशियन फेडरेशन। इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत अब संघीय परिषद के गठन में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं। एक, संघीय परिषद इकाइयों की व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एवं कार्यपालिका द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा निर्मित होगी। दूसरा, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल उन्हें नियुक्त या निर्वाचित करने वाला निकाय निर्धारित करेगा। तीसरा, राज्य विधायिका द्वारा नियुक्त सदस्य के लिए अनिवार्य है कि राज्य विधायिका के सभापति द्वारा उसका नाम प्रस्तावित किया जाए। जहां दो सदन हैं वहां दोनों सभापति संयुक्त प्रस्ताव रखेंगे। विधायिका के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा उस पर निर्णय देंगे एवं विधायिका उस पर संकल्प पारित कर निश्चित करेगी। जहां दो सदन है वहां संयुक्त रूप से ऐसा होगा। चौथा, विधायिका के 1/3 सदस्यों का समूह वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में किसी अन्य का नाम प्रस्तावित कर सकता है। पांचवा, कार्यपालिका द्वारा मनोनीत सदस्य के लिए आवश्यक है कि संबंधित इकाई की कार्यपालिका उसके मनोनयन का आदेश जारी करे। ऐसा आदेश उस इकाई की व्यवस्थापिका को 3 दिन के भीतर भेजना आवश्यक है। छठा, उक्त आदेश तभी प्रभाव में आ सकता है जबकि संबंधित इकाई की व्यवस्थापिका ऐसे संकल्प को 2/3 बहुमत से अपने चालू सत्र या विशेष सत्र में पारित कर दे। इस प्रकार वर्तमान में संघीय परिषद के सदस्य के निर्वाचन या मनोनयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया गया है। सदस्यों की योग्यता। सन 2000 में पारित अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि रूसी संघ का कोई भी नागरिक जो 30 वर्ष की आयु से कम का न हो तथा जिसे निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त हो वह संघीय परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है। बैठक एवं स्थान। संघीय परिषद एक अस्थायी कार्यकारी निकाय है। इसकी बैठक इसकी सुविधा अनुसार कभी भी हो सकती है किंतु महीने में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। इसकी बैठकें ड्यूमा की बैठकों से पृथक होती है किंतु राष्ट्रपति के अभिभाषण, संवैधानिक न्यायालय के अभिभाषण अथवा विदेशी नेताओं द्वारा संघीय सभा को संबोधित करने हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान रखा गया है। गणपूर्ति। संघीय परिषद के किसी भी सत्र के वैधानिक रूप से चलने के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। कानूनों तथा संकल्पों को स्वीकार करने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने वीटो लागू कर दिया हो और संघीय परिषद पुनः उसे पारित करना चाहे तो उस विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संघीय संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के मौलिक सिद्धांतों पर विचार करने एवं संविधान सभा के गठन के लिए 3/5 बहुमत की आवश्यकता होती है। संघीय परिषद के प्रक्रियात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। सभापति एवं पदाधिकारी। संघीय परिषद सदन के कार्यों तथा सत्रों को संपादित करने के लिए एक सभापति, प्रथम उपसभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन करती है। यह निर्वाचन संघीय परिषद के सदस्यों में से ही होता है। पदाधिकारियों को कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार भी प्राप्त है। सभापति तथा उसके उपसभापति सुविधानुसार संघीय परिषद के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। संघीय परिषद की शक्तियां। संविधान और संघीय कानून संघीय परिषद को जो अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करती हैं उसका उल्लेख निम्न है। पहला, विधायी शक्तियां। संघीय परिषद को कानून निर्माण का अधिकार है। वह ड्यूमा के सहयोग से संघीय कानूनों का निर्माण करती है। यद्यपि संघीय कानून बनाने के अधिकार में ड्यूमा को कम शक्तिशाली है क्योंकि कानून बनाने के लिए विधेयक का पहले ड्यूमा से पारित होना आवश्यक है किंतु ड्यूमा को किसी विधेयक को पारित कर 5 दिन के भीतर संघीय परिषद के विचारार्थ भेजना आवश्यक है। वह ड्यूमा द्वारा पारित विधेयक पर सहमति या असहमति प्रकट करने में असमर्थ है। यदि ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक पर असहमत हो तो दोनों सदन द्वारा गठित आयोग इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करता है किंतु यदि ड्यूमा इस आयोग के सुझाव पर असहमति रखे तथा पुनः मूल विधेयक को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो विधेयक पारित माना जाता है। दूसरा, विधान प्रस्तावित करने की शक्ति। रूस के संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार संघीय परिषद अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव ड्यूमा को भेज सकती है। उसे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संकल्प या प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार प्राप्त है। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य। संघीय परिषद राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की घोषणा करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघीय परिषद 9 के बेर राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि की घोषणा करती है, अब आवश्यक होने पर पुनः निर्वाचन की भी घोषणा करती है। चौथा, न्यायिक अधिकार। संघीय परिषद राष्ट्रपति पर अभियोग संबंधी प्रस्ताव जिसे ड्यूमो ने पारित करके भेजा है पर विचार करती है। उसके द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने पर महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति का पद स्वतः रिक्त माना जाएगा, और यदि संघीय परिषद महाभियोग प्रस्ताव से असहमत हो तो प्रस्ताव ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश, रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा मध्यस्थता के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के पदों के लिए मनोनीत करने से पूर्व उनके नामों पर संघीय परिषद की सहमति आवश्यक है। रूसी संघ के प्रोसिक्यूटर जनरल पद पर नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के पूर्व भी राष्ट्रपति को संघीय परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, वित्तीय शक्ति। यद्यपि वित्तीय बजट प्रारंभ में ड्यूमो में ही लाया जाता है, किंतु संघीय बजट पर नियंत्रण रखने के लिए 200 सदनों के संयुक्त रूप से गठित लेखांकन समिति के उपसभापति तथा उसके आधे सदस्यों को नियुक्त तथा पदमुक्त करने का उसे अधिकार है। छठा, सैन्य शक्ति। संघीय परिषद रूसी संघ की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर रूस के सशस्त्र बलों के उपयोग की संभावनाओं पर निर्णय करती है। मार्शल लॉ लागू करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। सातवां, सीमा संबंधी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 102A के अंतर्गत संघीय परिषद को रूस की इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन का अधिकार है। आठवां, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने संबंधी आदेश पर संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। नौवां, विविध शक्तियां। ए, संघीय परिषद राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद में अपने 2 प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। बी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 15 सदस्यों में से 5 सदस्यों को संघीय परिषद नियुक्त करती है। सी, लोक सेवा परिषद यानी सिविल सर्विस काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। डी, फेडरल सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन के 15 सदस्यों में से 1 को नियुक्त करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संघीय परिषद विधायी क्षेत्र में ड्यूमा की तुलना में कम शक्तिशाली है, किंतु कुछ क्षेत्र में उसकी शक्ति ड्यूमा से भी अधिक है। अब प्रतिनिधि सभा, ड्यूमा, संरचना एवं कार्य। ड्यूमा गठन। रूस की संघीय सभा का प्रतिनिधि सदन या निम्न सदन ड्यूमा यानी स्टेट ड्यूमा है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों का यह सदन काफी शक्तिशाली सदन है। रूस के संविधान के अनुच्छेद 95 में यह उल्लिखित है कि संविधान सभा के 2 सदनों में 1 प्रतिनिधि सदन ड्यूमा होगा। इसी अनुच्छेद के खंड 3 में कहा गया है, प्रतिनिधि सदन ड्यूमा में 450 सदस्य यानी डिप्यूटीज होंगे। ड्यूमा का निर्वाचन। रूस के संविधान के अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि ड्यूमा के सदस्यों यानी डिप्यूटीज की निर्वाचन प्रक्रिया स्थापित संघीय कानून के अनुसार होगी। इसी आधार पर जून 1999 में संघीय सभा ने रूसी संघ की संघीय सभा के ड्यूमा के सदस्यों के निर्वाचन पर संघीय कानून पारित किया। फेडरल लॉ ऑन द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटीज ऑफ द स्टेट ड्यूमा ऑफ द फेडरल असेंबली ऑफ द रशियन फेडरेशन 1999। रूस में ड्यूमा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया काफी जटिल एवं नवीनता लिए हुए है। इस निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, दोहरी निर्वाचन पद्धति। ड्यूमा के सदस्य को निर्वाचन हेतु 2 पद्धतियां काम में ली जाती है। ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत सूची प्रणाली। बी, समान प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। ड्यूमा के 450 सदस्य में से आधे अर्थात 225 सदस्यों की का निर्वाचन सूची पद्धति तथा शेष 225 सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से होता है। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण। सूची पद्धति में होने वाले निर्वाचन में रूस का पूरा प्रदेश एक निर्वाचन जिले के रूप में कार्य करता है, जिसे संघीय निर्वाचन जिला कहा जाता है। भौगोलिक आधार पर निर्मित निर्वाचन क्षेत्रों को एकल जनादेश निर्वाचन जिले कहा गया है। निर्वाचन जिलों का निर्माण करते समय समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत तथा सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के मध्य समन्वय को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक इकाई में कई निर्वाचन जिले होते हैं, किंतु कम से कम एक निर्वाचक जिला होना आवश्यक है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम न हो। एकल जनादेश वाले जिलों का गठन करते समय पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इन जिलों के निर्माण के इस प्रकार होते हैं कि उस प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता लगभग समान रूप से पंजीकृत हो। मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी रूसी नागरिक सार्वभौमिक समान प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान के आधार पर मत देने का अधिकार है। उम्मीदवार की योग्यता। कोई भी रूसी नागरिक जो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो निर्वाचित होने की योग्यता रखता है ड्यूमा की सदस्यों के लिए चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार को नामांकन के समय अपनी शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय का ब्यौरा, यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। निर्वाचक संघ या गुप्त इलेक्टोरल एसोसिएशन और ब्लॉक्स। चूंकि रूस में सूची पद्धति को भी अपनाया गया है, अतः राजनीतिक दलों एवं गुटों या गठबंधन की आवश्यकता होती है। 1999 के संघीय कानून के अनुसार चुनाव में भाग लेने के लिए पूरे देश में मौजूद उन संघों को निर्वाचक संघ का दर्जा प्रदान होगा जिन्होंने निर्वाचन की तिथि की घोषणा के कम से कम 6 माह पूर्व विधि मंत्रालय में अपना पंजीयन करवा लिया हो। निर्वाचित गुट यानी गठबंधन वह होगा जिसमें 2 से अधिक निर्वाचक संघों ने चुनाव प्रचार की अवधि में स्वयं के गुट के रूप में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पंजीकृत करवा लिया हो। ड्यूमा की शक्तियां निम्नांकित हैं। पहला, विधायी शक्ति। ड्यूमा को व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक सर्वप्रथम ड्यूमा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ड्यूमा का संघीय कानूनों तथा संघीय संवैधानिक कानूनों पर अधिनियम बनाने का अधिकार है। यद्यपि उसके द्वारा पारित विधेयक संघीय परिषद एवं राष्ट्रपति की सहमति एवं अनुमोदन के बाद ही कानूनी रूप लेते हैं, किंतु यदि संघीय परिषद या राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे और ड्यूमा पुनः अपने कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर दे, तो वह संघीय परिषद एवं राष्ट्रपति की अस्वीकृति के बावजूद कानून का रूप ले लेगा। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में ड्यूमा रूस की सबसे प्रमुख शक्तिशाली निकाय है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ड्यूमा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रियों से ड्यूमा के सरकारी घंटे में ड्यूमा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन पर संबंधित मंत्री या प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है। जब भी नया राष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है, तब राष्ट्रपति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी सरकार का सभापति यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। किंतु कोई भी व्यक्ति तभी प्रधानमंत्री बन सकता है जबकि ड्यूमा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति के नाम पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। ड्यूमा लगातार 3 बार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति को अनुमोदन देने से इनकार कर सकती है। इस प्रकार सरकार के प्रति ड्यूमा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, किंतु यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे। किंतु यदि ड्यूमा लगातार 3 माह में 3 बार सरकार के विरुद्ध ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति के पास सरकार को बर्खास्त करने या ड्यूमा को भंग करके नया चुनाव करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तीसरा, वित्तीय शक्तियां। ड्यूमा के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। संघीय बजट ड्यूमा में ही प्रस्तावित होता है तथा उसके द्वारा ही पारित होता है। वह सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वीकार कर अपनी ओर से भी बजट ला सकता है। उसे लेखांकन समिति के आधे सदस्यों तथा सभापति को नियुक्त तथा प्रच्युत करने का भी अधिकार है। रूसी संघ के केंद्रीय बैंक के सभापति को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार भी ड्यूमा को है। ड्यूमा रूसी संघ के केंद्रीय बैंक का लेखांकन करने के लिए किसी भी फर्म को नियुक्त करने का अधिकार रखती है। चौथा, न्यायिक शक्तियां। ड्यूमा को राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाने प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। वह राजद्रोह या संघीय अपराध के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। उसे राजनीतिक महाफी देने का भी अधिकार है। ड्यूमा ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने एक क्षेत्र चेचनिया के कई अपराधियों को आम माफी प्रदान की है। पांचवा, सूचना प्राप्ति का अधिकार। जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो इसकी सूचना तत्काल ड्यूमा को देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा अथवा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा करता है तो ड्यूमा को जानकारी देना आवश्यक है। छठा, संविधान में संशोधन की शक्ति। ड्यूमा के संविधान में संशोधन का अधिकार है। ड्यूमा के कुल सदस्यों के 1/5 सदस्य संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव ला सकते हैं, किंतु प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/5 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। सातवां, अन्य शक्तियां। ए, वह मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति एवं प्रतिनिधि का अधिकार रखती है। बी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 15 सदस्यों में 5 सदस्यों को नियुक्त करती है। सी, राज्य सेवा संबंधी राष्ट्रपति है परिषद में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है। और डी, वह बॉन्ड मार्केट में 15 सदस्यों में 1 सदस्य को नियुक्त करती है। ड्यूमा और राष्ट्रपति के संबंध 2 रूप में देखा जा सकता है, एक परस्पर सहयोगी दृष्टिकोण, दूसरा परस्पर गतिरोध का दृष्टिकोण। यदि राष्ट्रपति और ड्यूमा दोनों किसी विषय पर एक दृष्टिकोण रखते हो तो एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में राष्ट्रपति येल्सिन के कार्यकाल में कर संहिता, फौजदारी संहिता, न्यायिक सुधार ऐसे विषय रहे जहां दोनों ने परस्पर सहयोग से कार्य किया। कई बार राष्ट्रपति एवं ड्यूमा किसी विधेयक को लाने से पूर्व भी सहयोग करते हैं। कई बार राष्ट्रपति किसी विषय पर आदेश जारी करता है तो उसे विधेयक के रूप में ड्यूमा भी पारित करके सहयोग प्रदान करती है। लेकिन कई बार राष्ट्रपति और ड्यूमा किसी विषय पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। जब राष्ट्रपति और ड्यूमा में विरोधी पक्ष सामने आता है तो सामान्यतः इसका परिणाम समझौते के रूप में सामने आता है, जिसमें राष्ट्रपति का पक्ष प्रायः महत्वपूर्ण हो जाता है। संघीय सभा के दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन। समान रूप से देखने में प्रतीत होता है कि संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान है, किंतु तुलनात्मक रूप से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संघीय सभा के दोनों सदनों में कुछ अधिकार समान है तो कुछ पृथक पृथक। कुछ क्षेत्रों में संघीय परिषद ड्यूमा की तुलना में कम शक्तिशाली है तो कुछ क्षेत्र में समान और कुछ क्षेत्रों में वो ड्यूमा से अधिक शक्तिशाली है। विधायी क्षेत्र में ड्यूमा संघीय परिषद से अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक विधेयक ड्यूमा में ही पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। संघीय परिषद ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति प्रदान प्रकट कर सकती है। यदि संघीय परिषद ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक पर असहमत है तो दोनों सदनों द्वारा गठित संयुक्त आयोग इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन ड्यूमा इस आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर असहमत प्रकट करते हुए उस विधेयक को पुनः अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो फिर संघीय परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती है। संघीय परिषद और ड्यूमा दोनों ही अपने अपने सदन के सत्र में सरकारी काल में सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, किंतु प्रधानमंत्री के चयन में सहमति और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने और उसे पारित करने का अधिकार केवल ड्यूमा को है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वाह संघीय परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है, किंतु उसे महाभियोग लगाकर हटाने का अधिकार दोनों सदनों के पास समान रूप से है। यद्यपि महाभियोग का प्रस्ताव ड्यूमा में ही पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, किंतु यदि ड्यूमा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर संघीय परिषद असहमति प्रकट कर दे तो फिर प्रस्ताव ही समाप्त हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में संघीय परिषद को ड्यूमा से अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त होती हैं। उदाहरणतः रूस की इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन के प्रस्ताव पर संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय, मध्यस्थता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी पर केवल संघीय परिषद की सहमति आवश्यक है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां दोनों सदनों को लगभग समान अधिकार प्राप्त है, जैसे लेखांकन समिति के सभापति और आधे सदस्य ड्यूमा द्वारा तथा उपसभापति और आधे सदस्य संघीय परिषद द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 15 सदस्यों में 5-5 सदस्य दोनों सदनों द्वारा भेजे जाते हैं। लोक सेवा परिषद में भी दोनों सदन सदस्य नियुक्त करते हैं। उपयुक्त अध्ययन से ऐसा स्पष्ट होता है कि रूसी संविधान तथा संघीय कानून संघीय परिषद को सक्रिय विधायी निकाय बनाने के स्थान पर एक परामर्शदारी संस्था तथा संघात्मक शासन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व तथा समन्वय करने वाले निकाय का रूप ज्यादा देते हैं। ड्यूमा संघीय परिषद की तुलना में निश्चित रूप से कुछ अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार रूसी संघ के नवीन संविधान में उदारवादी लोकतंत्रीय राज्यों के समान ही विधायी संस्थाओं का ढांचा खड़ा किया गया है तथा कानून निर्माण के लिए विधायी प्रक्रिया निश्चित की गई है। रूसी संघ में संघीय सभा को लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो स्थिति भारत में संसद या अमेरिका में कांग्रेस को प्राप्त है। रूस के व्यवस्थापिका की यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार, बीए सेकंड ईयर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के द्वारा पुखराज जैन की पुस्तक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के द्वारा 8 दिसंबर 2007 को की गई।